कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो और प्रभु प्रिय भी हो। शांति प्रिय जो होता है वो प्रभु प्रिय भी होता है। शांति से भी आपका प्यार है, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में शांति शब्द ने आप सबको यहाँ आकर्षित किया है। और प्रभु से भी प्यार है, इसलिए आध्यात्मिकता शब्द ने आपको यहाँ के लिए आकर्षित किया है। तो जो शांति प्रिय है, प्रभु प्रिय है, उसका जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है। वो अपने जीवन में मूल्यों को धारण करता है। उनका योग परमात्मा के साथ होता है। उनकी आज्ञाओं पर वो चलता है। तो यहाँ आप आए हैं, वो राजयोग का अनुभव करने के लिए। और अभी अभी हम सब ने गीत सुना, ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। तो राजयोग क्या है? ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा का मिलन, जिससे क्या प्राप्ति होगी? क्योंकि ज्योति बिंदु परमात्मा से जब आत्मा का मिलन होगा तो उसे परमात्मा से हम परमानंद का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि हम उनकी लगन में मग्न हो जाते हैं। तो परमानंद का अनुभव कर ले तो हो जा मन में मगन, ये है राजयोग। तो आपने योगी जीवन के लिए पहले खुद को पहचाना, आप ये देह नहीं है लेकिन एक आत्मा है। फिर आपने उस परमात्मा को भी पहचाना, परमात्मा कौन है उसकी सही पहचान आपको मिली। अब इन दोनों का मिलन कैसे हो, उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है, वो हम आज आपको बताना चाहेंगे। अगर हम इस विषय को थोड़ा सा रिवर्स करें या बैक करें, योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जोड़, जो संस्कृत के युज शब्द से आया है। जैसे वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, दूर जाना, अलग होना, उसके कंट्रास्ट में योग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, एक होना। तो योग शब्द का अर्थ समझना मुश्किल नहीं है। और अगर हम देखें तीन प्रकार के योग हैं, एक है भौतिक स्तर का योग जिसमें वस्तुओं का जोड़ होता है, एनर्जीज का जोड़ होता है। बिजली घर से हम कनेक्शन करते हैं तो हमें बिजली प्राप्त होती है, ये भी एक योग है। मन से किसी को याद करते हैं वो भी एक योग है। फिर चाहे वो व्यक्ति की याद हो, वस्तु की याद हो, कोई स्थान की याद हो, किसी की भी याद, वो योग है। तो एक हिसाब से हम सब योगी हैं, सब योगी हैं, क्योंकि मन सदैव कुछ न कुछ सोचता है और जिसके विषय में सोचता है उसके साथ उसका योग है। लेकिन जब यह मन परमात्मा में लग जाता है तो ये सबसे ऊंचा योग है, जिसको हम आध्यात्मिक स्तर का योग कहते हैं और इसी को हम राजयोग कहते हैं। क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता है, ईश्वर परमात्मा, जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, जिसके लिए कहा गया है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उस परमात्मा से मन की तार जुड़ जाती है और उनके साथ मन की तार जोड़ने की जो विधि है वो भी बहुत ऊंची है। क्योंकि कई तरीकों से हम मन को परमात्मा में लगाना चाहते हैं, लगाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप हवन करते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मंदिरों का भ्रमण करते हैं। यही ये तरीके हैं मन को परमात्मा में लगाने के। लेकिन हमारी यही सदा शिकायत रहती है कि मन लगता नहीं, मन भटकता है। अर्जुन ने भी यही शिकायत की भगवान से कि ये मन बहुत चंचल है, पापी है, दुष्ट है, एक घोड़े की तरह है। तो भगवान ने उनको दो कदम बताए मन को वश करने के लिए, मन को प्रभु में लगाने के लिए। और वो दो कदम क्या बताए? एक बताया वैराग्य। मन क्यों भटकता है? क्योंकि अनेक व्यक्ति वस्तु वैभवों में फंसा हुआ है मन। और क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि हम अपने आप को ये देह देखते हैं। इस देह अभिमान के कारण मन भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को ये निश्चय करते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, देह का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है। देह का संबंध तो इस संसार की चीजों से है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति की देन है। तो जो प्रकृति से संबंधित बातें होगी उसी में मन जाएगा, अगर हम अपने आप को ये देह रूप में देखेंगे। तो जिस प्रकार बिजली की तार से घर की जो बिजली हम चाहते हैं तो वो जोड़ने के लिए रबर को हटाना पड़ता है, बैड कंडक्टर है वो रबर, वो इंसुलेशन है, वो शक्ति को आने नहीं देगा, रुकावट डालेगा। कॉपर टू कॉपर ज्वाइन करना है, तांबे को तांबे से मिलाना है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, उससे ही शक्ति का आना होगा। इसलिए ये देह अभिमान एक रबर की तरह है, विघ्न है, एक इंसुलेशन है। आत्मा को उस परमात्मा से शक्ति लेने नहीं देगा और मन भटकेगा। इसलिए परमात्मा ने दो कदम बताए। पहला बताया वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं है सब कुछ छोड़ देना। भगवान ने तो और ही कर्म योग सिखाया, कर्म भी करो लेकिन मेरी याद में करो। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम्। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार हो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, वो मुझे मेरी जिम्मेदारी है। आप केवल श्रेष्ठ कर्म करो। इसलिए जब हम कहते हैं वैराग्य, तो इसका अर्थ है कि कर्म करो पर फल की चिंता बिना करो। फल ईश्वर पर छोड़ दो, उसमें फंसो नहीं। क्योंकि अधिकतर हम जो भी कर्म करते हैं, हम पहले सोचते हैं इससे मिलेगा क्या, तो फल की इच्छा पहले रख देते हैं और वो कर्म सेकेंडरी स्टेज हो जाता है। लेकिन कर्म प्राइमरी स्टेज हो, प्रायोरिटी कर्म को दिया जाए, फल ईश्वर पर छोड़ दो। और अगर सफलता मिली तो उसका अभिमान भी मत करो, क्योंकि ये भगवान ने दिलाई। और अगर असफलता मिली तो भी दुख मत करो, क्योंकि ये एक प्रयोग था, एक अनुभव था, और ये अनुभव हमको आगे बढ़ाएगा। हर कदम पर अनुभव होते रहते हैं। फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। इसीलिए दुख भी मत करो। इसका अर्थ होता है फंसो मत, का कर्म करो और जीवन को कमल फूल के समान रखो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, वैसे अपना जीवन इस संसार में रखो और मन को इनसे न्यारा करो। तो राजयोग हमें वो सही विधि बताता है, और वो सर्वोच्च विधि है जिसमें कोई शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहज योग है, राजयोग है, रॉयल योग है। और विधि इतनी सर्वोच्च है कि मन इतना सहज लग जाएगा परमात्मा में, जैसे बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है। ये है सहज विधि, जो सर्वोत्तम विधि है। और इनसे प्राप्ति भी सर्वोच्च है, क्योंकि सफलता का जो डेफिनेशन है वो भी हर एक ने अपने अपने ढंग से ले लिया है। लेकिन सच्ची सफलता हम तब कहेंगे जब उसके बाद हमें जीवन में शांति मिले, खुशी मिले, सबका रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, अंतर का संतोष अनुभव हो, वो है सच्ची सफलता। हमने सब कुछ पा लिया, दुनिया के सारे वैभव पा लिए, मान सम्मान पा लिया, लेकिन अगर अंदर की शांति नहीं है तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। ये है उसकी गति। इसलिए सर्वोच्च प्राप्ति अर्थात जीवन में शांति भी हो, सुख भी हो, समृद्धि भी हो, तन निरोगी हो, मन संतुष्टता से भरपूर हो, धन भी सुख दे, संबंधों का भी प्यार सम्मान बना रहे, तब कहेंगे सच्ची सफलता। और वो सर्वोच्च प्राप्ति भी हमें राजयोग से मिलती है। इसलिए कई प्रकार के आज संसार में मंतव्य है राज योग के बारे में, कई विचारधाराएं हैं, कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं मेडिटेशन के बारे में। कई समझते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको अपने मन को ब्लैंक बनाना होगा, चित्त वृत्ति निरोध कह देते हैं। लेकिन चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करना है, सप्रेशन नहीं करना है, वैराग्य जरूर लाना है, लेकिन इसका मतलब सप्रेशन नहीं है। क्योंकि मन को हम दमन नहीं करते, लेकिन मन को हम अमन करते हैं। अमन माना शांति। तो कैसे करेंगे अमन? जब हम मन को सुमन बनाएंगे। एक है दमन करना, दूसरा है सुमन बनाना, अर्थात श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन। और ये अभ्यास, ये दूसरा कदम है जिसमें हम श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन करते हैं। किसको हम कहेंगे श्रेष्ठ विचार? सकारात्मक विचार, शुभ विचार, शुद्ध विचार। ये अभ्यास हमें लगातार करना होगा, तब मन की शुद्धि होगी, तब मन परमात्मा में लगेगा। इसलिए केवल मन को शून्य करने से मन ईश्वर में लगेगा ये सोच भी गलत है। क्योंकि एक तरफ हम सोचते हैं मन ईश्वर में लगाएं और दूसरी तरफ मन को दमन कर रहे हैं। तो मन को श्रेष्ठ विचारों से भरपूर करेंगे तब मन शुद्ध होगा। हमें मन का शुद्धिकरण चाहिए, क्योंकि उस शुद्ध मन में ही परमात्मा स्थान ले सकेगा। अगर किस दमन कर दिया तो कुछ समय के लिए तो दमन होगा। एक बच्चे को आपने बांध के बिठा दिया, चलो दो घड़ी के लिए बंद के बैठेगा, लेकिन अगर वो चंचल है तो वो बंधन जो आपने डाला वो बहुत समय नहीं चलेगा। इसलिए मन कोई एक चंचल बच्चे की तरह जरूर है, लेकिन वो बुरा नहीं है। बच्चा तो बुरा नहीं होता, भले चंचल होता है। तो मन भी बुरा नहीं है, मन आपका दुश्मन नहीं है, मन आपका सच्चा मित्र है। क्योंकि यही मन परमात्मा में भी ले जाएगा आपको, परमात्मा मिलन का अनुभव कराएगा। इसलिए दमन नहीं करना है, शून्य बनाने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा, फिर कई कहते क्या दबाव डालना है? दबाव भी नहीं डालना है। जैसे सहज रीति से बच्चा अपने माँ बाप को कैसे भूल सकता है? नहीं भूल सकता। एक स्टूडेंट अपने टीचर को कैसे भूल सकता है? एक शिष्य अपने गुरु को कैसे भूल सकता है? एक मित्र अपने मित्र को कैसे भूल सकता है? वो संबंध इतने गहरे होते हैं जो उनको भूल नहीं सकते हैं। इसलिए दबाव डालने की बात नहीं है, लेकिन सब संबंध हमारे परमात्मा के साथ कैसे हो वो जरूर विधि जाननी है। वैसे तो परमात्मा के साथ आत्मा के है ही सर्व संबंध, हम गाते भी हैं, प्रार्थना में यही कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। देहधारियों के साथ हमारे संबंध तो एक जन्म के होते हैं, और वो भी कर्मों अनुसार संबंध होते हैं। कोई हिसाब किताब है इसलिए हम उनके साथ संबंध रखते हैं, और जब हिसाब किताब कर्मों का पूरा होता है संबंध भी पूरा हो जाता है। अगले जन्म में उसी संबंध से नहीं मिलेंगे, लेकिन परमात्मा के साथ आत्मा के कर्म अनुसार संबंध नहीं है। परमात्मा ने वो कर्तव्य किए हैं, मात पिता बंधु सखा, ये सब जो संबंध है वो कर्तव्यों के आधार पर है। ये सब संबंध ईश्वर ने निभाए हैं आत्मा के साथ, तभी परमात्मा को हम उन संबंधों से याद करते हैं और हर जन्म में याद करते हैं। वो संबंध तो एक जन्म के हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हर जन्म में हमारे ये सर्व संबंध है, तो दबाव डालने की तो बात ही नहीं है। फिर कोई कहते हैं मन तो बहुत चंचल है, क्योंकि कैसे हम मेडिटेशन करें, तो क्यों इतना चंचल हो गया है मन? क्योंकि मन में बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव। नेगेटिविटी को देखना, नकारात्मकता को देखना वो सहज है, जैसे नीचे गिरना सहज है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नीचे गिरने के लिए, वो ग्रेविटेशनल पुल आपको अपने आप खींचेगा नीचे, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना, क्योंकि ये बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, देह अभिमान के कारण, ये काम क्रोध लोभ अहंकार के आधार पर जो मन में विचार चलते हैं, ये मन को इतना चंचल बना देते हैं जो मन ईश्वर में लगता ही नहीं है, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट। फिर कई कहते हैं कि क्या उसके लिए कुछ आसन करना पड़ेगा, हम कहते हैं नहीं, सुखासन हम, आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पर, सोफा पर, बेड पर लेट करके भी कर सकते हैं, कोई खास आसन लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम उसके लिए मानसिक प्रयोग बताते हैं, जैसे कोई पद्मासन के लिए कहते पद्मासन में बैठे, हम कहते पद्म जैसा जीवन बनाओ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। जैसे पद्म कमल का फूल कीचड़ में रहकर न्यारा रहता है, वैसे अपना जीवन बनाओ, दिस इज स्पिरिचुअल आसन। तो इसीलिए पद्मासन माना कमल फूल समान जीवन, शीर्षासन सिर नीचे पैर ऊपर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस ऑफ माइंड करने की जरूरत है, नॉट बैलेंस ऑफ हेड। तो हर परिस्थिति में मेंटली बैलेंस, इमोशनली बैलेंस हम इस राजयोग मेडिटेशन से रह सकते हैं, यही हमारा आसन है। फिर कई कहते हैं कि इसके लिए तो वातावरण एकदम शांत चाहिए, शांत रहना होना अच्छी बात है, लेकिन हर समय तो शांत वातावरण मिलेगा नहीं, पर कई बार आवाज होते हुए भी अंदर में हम बहुत शांति का अनुभव कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है मंदिर में, मंदिर में जाते हैं चारों ओर ढोल बज रहे हैं, मानो कीर्तन हो रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा मन उस समय शांत है, तो वो आवाज हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करता, ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत हम देखे कई बार बिल्कुल एकदम सुनसान जगह पर हम हैं, लेकिन जितना ही वो बिल्कुल सुनसान है, जरा भी आवाज नहीं है, वहां हमें डर लगता है, वहां और ही मन अशांत हो जाता है। इसीलिए आवाज न हो तब हमारा मेडिटेशन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। फिर कई कहते इसमें आंखें बंद करके करनी होगी, करना होगा, हम कहते आंखें भी भले खुली रखो, हम लोग तो ओपन आईड मेडिटेशन करते हैं, परंतु ये आंखें इनको न देखे, एक ऐसी प्रैक्टिस हो जो ये सब देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने। इसका मतलब ये नहीं कि आंखों को हम ताला लगा दें या कानों को ताला लगा दें, आंखों को तो फिर भी पलके हैं हम बंद कर सकते हैं, कान को तो बंद भी नहीं कर सकते, आवाजें तो जाएगी, लेकिन ये आंख ये सब देखते हुए भी ये न देखे, पर मन की आंख परमात्मा को देखे, ये सब सुनते हुए भी, बाहर की आवाजें सुनते हुए भी न सुने, अंतर में परमात्मा की आवाज सुने, ये जरूर हमें मेडिटेशन सिखाता है। तो आंख बंद करने की भी बात नहीं है। फिर कई कहते हैं इसमें हम अपने श्वास को केंद्रित करें, क्योंकि कई मेडिटेशंस हैं जिसमें श्वास पर केंद्रित करते हैं, इनहेलिंग एक्सहेलिंग ये सब जो करते हैं, समझते हैं यही प्राण वायु है, यही चेतनता है, इस पर ही ध्यान हो, लेकिन हम कहते हैं ये तो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग है, और ही जब टेंशन में होते हैं तो ब्रीदिंग हमारी हाई हो जाती है, वो तेज हार्ट बीट भी हो जाता है। लेकिन जब हम बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में हैं तो सब कुछ नॉर्मल है। तो इसीलिए बाह्य स्थिति हमारी बहुत नॉर्मल हो पर अंतर में हम परमात्म मिलन का अनुभव करते हैं, तो ये श्वास को देखना यही लक्ष्य नहीं है। और फिर कई कहते अच्छा तो लगता है लेकिन उब जाते हैं, वी गेट बोर्ड। तो क्यों बोर्ड हो जाते हैं, उब जाते हैं? क्योंकि कुछ क्रिएटिविटी नहीं देते हैं मन को। मान लीजिए हम मंत्र फेरते हैं, मंत्र मुख से उच्चारण करते हैं, ओम नमो शिवाय का मंत्र भी जाप करते रहते हैं, हाथ में माला भी होती है, आंखों के सामने शिव की का लिंग भी होगा, हो सकता है। तो हमने उंगलियों को तो काम दिया माला फेरने का, मणके फेरने का, मुख को भी काम दिया मंत्र जाप करने का, आंखों को भी काम दिया, वो मूर्ति सामने है हम उसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन को काम नहीं दिया। अब मन को काम देना है, इसलिए भगवान ने कहा मन मेरे में लगाओ। तो मन को कैसे काम दे, उसके लिए एक बहुत सुंदर क्रिएटिविटी चाहिए मन के लिए। वो रचनात्मक सोच बहुत जरूरी है। अगर केवल कुछ मंत्र उच्चारण ही है तो मन बोर हो जाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को आप एक खिलौना दे दो, अब उसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे ही लकड़ी का खिलौना है, दो घड़ी मुंह में डालेगा, उसको कुछ महसूस नहीं हुआ फेंक देगा, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, उसकी बुद्धि उसमें चले, दिमाग चले, तो उसको अच्छा लगेगा, उसको और अनुभव करता रहेगा। तो मान लीजिए हमने ओम नमो शिवाय का जाप किया, और हमें कई बार तो कहा जाता है 10,000 बार करो, 1,00,000 बार करो। तो अधिकतर देखा जाता है कि वो जाप भी करते हैं पर साथ साथ गिनती भी करते हैं। तो योग हमारा शिव के साथ नहीं होता है पर गिनती के साथ हो जाता है, क्योंकि ओम नमो शिवाय माना मैं परमात्मा को, शिव को नमः कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ शिव को। तो मैं कौन, जब तक आत्मा निश्चय नहीं किया है तब तक शिव को नमस्कार नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन है उस शिव से। और फिर नम्रता नहीं होगी तो भी वो नमस्कार स्वीकार नहीं होगा। नमः करने लिए, नमस्ते करने लिए नम्रता चाहिए। अभिमान में हम होंगे तो वो मंत्र आपका कहाँ ईश्वर को स्वीकार्य होगा। इसलिए वो तब होगा जब इतनी नम्रता भी हो, और फिर जिस शिव को हम याद करते उस शिव के साथ हमारा संबंध हो, उसकी हमें पूरी पहचान हो, तब मन लग सकेगा उनसे। इसलिए परमात्मा हमें वो सही विधि बताते हैं जिससे हमारा मन सहज परमात्मा में लग जाता है। और कई लोग मुश्किल समझ करके फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं ये हमारे से नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता है, उसके लिए पहले खुद को पहचानो। तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये राजयोग मेडिटेशन है, जिसमें 3 बातें बताई। आत्मा का निश्चय हो, मैं बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, हर कर्म करने वाली आत्मा हूँ, और यथार्थ हो, ईश्वर की पहचान यथार्थ हो, वो कौन है, वो कहाँ है, क्या उनका स्वरूप है, कैसे मिल सकते, ये सारी रोशनी हो, हमें पूरा एनलाइटनमेंट हो, और फिर उसकी याद हो। तो इसलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 कारणों से मन नहीं लगा ईश्वर में। एक तो खुद का अज्ञान, दूसरा परमात्मा का अज्ञान, और तीसरा मन इतना मैला, मन मैला होने के कारण प्रभु की याद कैसे टिकेगी उस मन में। इसलिए ये तीनों जो कारण है इनका निवारण हमको राजयोग में मिलता है। तो आपको आत्मा की तो पहचान मिली, परमात्मा की भी पहचान मिली, और जैसे एक बच्चा देहधारी है तो अपना उसका पिता देहिक होगा, देहधारी होगा, अपने पिता को सहज याद कर सकेगा, तो मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का पिता परमात्मा है, तो आत्म निश्चय करके परमात्मा में मन हमारा सहज लगेगा। लेकिन उसके लिए कुछ आधार है, कुछ विधि है। जैसे दुनिया में करोड़ों इंसान है, 700 करोड़ दुनिया की आबादी है, लेकिन हमारा मन सब में नहीं जाता है। चलो उसको छोड़ो, भारत में देखो 130 करोड़ की आबादी भारत की है, तो भी हमारा मन 130 करोड़ लोगों में नहीं जाता। चलो उसको भी छोड़ो, जिस शहर में आप रहते हैं उसकी भी आबादी कुछ लाख होगी, करोड़ होगी, उसमें नहीं जाता। उसको भी छोड़ो, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें भी हजारों लोग रहते होंगे, लेकिन आपका मन कहाँ जाता है सब में। कई बार तो मेरा पड़ोसी कौन है ये भी हमको पता नहीं होता है, तो मन कैसे जाएगा। मन वही जाता है जिसका आपको पहले परिचय हो, पहचान हो उसकी। इसीलिए जब भी आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले एक दो का इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पहले चाहिए। तो पहला कदम मन को कहीं भी ले जाने का है वो है पहचान। और पहचान करते करते देते लेते कुछ संबंध निकल आया, अब ये और एक कदम आगे, कुछ भी संबंध, एनीथिंग। बचपन में एक शहर में रहते थे, एक गांव में रहते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ये भी संबंध है। एक भाषा के हैं, एक प्रांत के हैं, एक धर्म के हैं, ये भी कुछ न कुछ सिमिलैरिटी, जहां थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी आई वो संबंध का अनुभव कराएगी। और आगे, और जहां ये संबंध जुड़ा, फिर उसके बाद कुछ उसकी विशेषताएं देखी, गुण देखे, तो उसके साथ प्यार भी हो जाता है, स्नेह हो जाएगा, रिस्पेक्ट हम करेंगे। और फिर कुछ चीजों की लेन देन भी हुई, उसने हमको गिफ्ट दिया, हमने भी उनको गिफ्ट दी, तो एक प्राप्ति का अनुभव होगा, अब मन आपका वहां सहज लग जाएगा। तो ये मूल रूप से चार आधार हैं मन को कहीं भी ले जाने के लिए। अब हम ये चारों आधार परमात्मा से लगाएंगे। सबसे पहला आधार आत्मा और परमात्मा की पहचान आपको कराई गई सुबह के समय, परसों, कल ये पहचान आपको कराई गई। अब इस पहचान के बाद संबंध, वास्तव में हमारा संबंध अनादि अविनाशी है ईश्वर के साथ, लेकिन उनसे आत्मा को शक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कई संबंध ये टूट गया है। जैसे यहाँ बिजली जल रही है क्योंकि बिजली घर से संबंध जुड़ा हुआ है, पर अचानक बिजली चली जाए, पंखे बंद हो जाए, माइक बंद हो जाए, सब बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, हम कहेंगे बिजली घर से कनेक्शन टूट गया। अब कनेक्शन टूट गया तो फिर जोड़ो, तो क्यों नहीं आत्मा को परमात्मा से शक्ति मिलती है, क्योंकि कहीं संबंध टूट गया है, अब जोड़े कैसे, वो विधि आपको बताएंगे। फिर जब संबंध जुड़ जाता है तो तीसरा आधार होता है स्नेह। आज जो हमारा ईश्वर के साथ जो स्नेह होना चाहिए वो बदल कर स्वार्थ में परिवर्तित हुआ है। स्वार्थ, ईश्वर मेरा कुछ काम कर दे तो मैं ईश्वर को मानूं, स्वार्थ, या तो एक डील, बिजनेस, भगवान मेरा ये काम करे तो मैं उनको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं, एक बिजनेस हो गई। तो ये स्वार्थ जहां आ गया वहां प्रेम खत्म हो जाता है, जहां स्वार्थ आ गया वहां वन वे ट्रैफिक हो जाता है। प्रेम में तो न्योछावर होना होता है, प्रेम में तो समर्पण होना होता है, प्रेम में तो त्याग होता है। अब वो प्रेम ईश्वर के साथ चाहिए, और फिर तो परमात्मा से प्राप्ति क्या होती है ये भी पता नहीं है। हम छोटी छोटी प्राप्ति ईश्वर से करना चाहते हैं, छोटी छोटी कलयुगी दुनिया की, हे भगवान हाँ इतना मेरा काम कर दो, मुझे प्रमोशन दिला दो, मकान दिला दो, मकान गाड़ी दिला दो, बच्चा दिला दो, बच्चा दो, ये दो दो दो, कोई न कोई वस्तु मांगते हैं भगवान से, कुछ न कोई छोटी मोटी, या तो भगवान से कोई गुण मांगते हैं, प्रभु शांति दो, शक्ति दो, ये दो वो दो, या तो कोई भूल करते हैं तो माफी मांगते हैं, भगवान माफ कर दो, ये भी दो दो दो, मानो मांगते ही रहते भिखारी बन करके। वास्तव में परमात्मा कहते हैं भिखारी मत बनो, तुम अधिकारी हो। कैसे अधिकारी हो? कोई वस्तु मांगने की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा ने इतना हमें दिया है, जो हम उसका कितना उपयोग करते हैं ये पहले हम देखें। अगर वो सही उपयोग जो दिया है उसका नहीं कर रहे हैं तो हमें और मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं जिनको ये भी नहीं है जो हमारे पास है। सो हाउ कैन आई आस्क फॉर एनीथिंग मोर, ये तो बहुत बड़ी सेल्फिशनेस है, बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसके बजाय अगर ईश्वर से सच्चा स्नेह है तो जो भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद करो, कीप थैंकिंग गॉड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव बीन गिवन बाय गॉड। तो जब हम अंदर से धन्यवाद करते हैं तो दिल में ईश्वर से इतना प्रेम जागृत होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वार्थी है, और चाहिए और चाहिए। इसलिए कल भी बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहे थे, देवता किसको कहेंगे जो देता है देता है देता है। तो जो देता है उसको मिलता भी है, ऐसे नहीं कि क्योंकि आप एक हाथ से देंगे दूसरे हाथ से मिलता है, इसलिए मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। कई कहते हम वस्तु भगवान से नहीं मांगते हैं, लेकिन भगवान से शांति तो मांगे, पर वो भी मांगने की चीज नहीं है, वो तो गुण है, वो गुण तो ग्रहण किया जाता है, मांगा थोड़ी जाता है। अब गुलाब के फूल में खुशबू है, अब वो खुशबू आप उनसे मांगते थोड़े हो, वो फूल आप अपने नाक के पास ले जाएंगे और सांस लेंगे तो उसकी खुशबू आपको मिलेगी, वो तो दे ही रहा है अपनी खुशबू। तो जो वस्तु अपना गुण दे ही रही है उनसे मांगा थोड़ी जाता है। परमात्मा तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो गुण मांगने की बजाय अधिकारी हैं हम, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है, इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। अंश, अंश का मतलब ये नहीं कि उसका कोई टुकड़ा है, अंश का मतलब है क्वालिटी इज द सेम, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। वो शांति का सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो प्रेम का सागर है तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, वो आनंद का सागर है मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। तो शांति प्रेम आनंद मांगने की बजाय हम अधिकार से वो अनुभव करें। कैसे? हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं, उसी निराकार ज्योति स्वरूप को, शिव बाबा आप शांति के सागर हो तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, आई हैव अ राइट, आई एम दैट। इसलिए जैसे ही हम ये चिंतन करते हैं शांति का अनुभव तो एक सेकंड में होता है। हाउ फार अवे इज पीस फ्रॉम यू, इट इज ओनली वन थॉट अवे, ओनली वन थॉट, केवल केवल एक सोच की दूरी पर है शांति आपसे। अगर आप ये सोचते हैं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति धाम का वासी हूं, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, ये गारंटी है। इसलिए आपको तीन बार ओम शांति कहलवाती है दादी जानकी, तो कभी नहीं भूलती ये कहलवाना। और फिर कहेंगे मैं कौन, मेरा कौन, तो ओम शांति पहला है मैं कौन, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा कौन, वो शांति का सागर। फिर तीसरी बार ओम शांति, मैं कहाँ से आया हूँ, शांति धाम से आया हूँ। तो जिसका स्वभाव शांति, जिसका पिता शांति का सागर, जिसका धाम शांति का धाम, वो अशांत कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। केवल सोच में परिवर्तन लाना है, इसीलिए कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति भी नहीं दे सकती है, ये भी चैलेंज है, कोई नहीं दे सकेगी, क्योंकि आपने खुद ही निश्चय कर लिया मैं अशांत हूँ। तो देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, यू अट्रैक्ट दैट व्हाट यू थिंक। बस यही अंतर को हमें समझना है। तो इसीलिए परमात्मा से स्नेह, परमात्मा से प्राप्ति, उनसे ही सच्चा संबंध, उसके लिए पहले उसकी पहचान। तो आत्मा की पहचान आपको मिली। अभी आप ये नहीं कहेंगे मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, लेकिन मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं। कई कहते आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती है, हम कहते कैसे आप देख सकेंगे इन आंखों से, ये आंखें तो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं से जो प्राकृतिक चक्षु हैं, उनसे आप जो मेटाफिजिकल है, जो प्राकृतिक नहीं है, उसको कैसे इन आंखों से देख सकेंगे, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। इसलिए ये प्रश्न भी व्यर्थ है सोचना कि दिखाई क्यों नहीं देती। तो आत्मा एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक अजब सितारा है, जो पवित्र ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का एक स्वरूप है। वो उनके निजी गुण है, ये उनकी निजी मानो नेचर है, नेचर होते ना हर एक का अपना अपना स्वभाव, ये आत्मा का मूल स्वभाव है। इसलिए इनको ढूंढने के लिए हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास ही है, केवल इनको जागृत करना, इसीलिए अवेकनिंग कहते हैं। और फिर मैं आत्मा इस इंद्रियों का मालिक हूं, तो मैं इंद्रियों का राजा हूं, क्योंकि मैं इन इंद्रियों से अलग हूं। मैं आत्मा यहां भ्रकुटी में मध्य विराजमान होकर अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखती हूं। मेरा जो असली धाम है वो तो पांच तत्वों से पार मूल वतन शांति धाम है, और वहां से मैं इस सृष्टि पर आई हूं। क्यों आई हूं, क्या ये भी प्रश्न करते हैं। अगर हम उस परम धाम के वासी, संसार में हम आए क्यों, क्यों आए, भगवान ने क्यों हमको इस दुनिया में भेजा, कभी आपने सोचा क्यों भेजा भगवान ने हमें इस दुनिया में। तीन कारणों से भेजा, और हम अपने अंदर देखिए ये तीन कारणों को हम पूर्ण कर रहे हैं। पहला कारण, ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर एक्टिंग करने लिए भेजा है, कर्म करने लिए भेजा है, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं। वो संस्कार कर्म करने के वो शरीर के द्वारा ही व्यक्त होते हैं, और ये संसार एक रंगमंच है, इट्स अ स्टेज, जिसको शेक्सपियर ने कहा दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो हर एक को जो रोल मिला हुआ है इस सृष्टि नाटक में, वो अपना रोल अच्छे से अच्छा बजाए, यही मेरा लक्ष्य हो, पहला कारण। दूसरा कारण इस संसार में आने का, जो आत्मा के अंदर गुण है उस रोल में वो गुण व्यक्त करे, वो गुण लेन देन करे। वो देंगे तो वो गुण मिलेंगे। आप शांति देंगे, शांति मिलेगी। खुशी देंगे, खुशी मिलेगी। रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट मिलेगा। ये गुण दे, मांगे नहीं। ये दूसरा लक्ष्य था। और तीसरा लक्ष्य था कि परमात्मा का नाम मुझे रोशन करना है, जिसने मुझे दुनिया में भेजा है। हम कहते हैं ईश्वर ने भेजा है, इसलिए तो भेजा है। आज आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी आपको विदेश भेजती है कुछ सीखने के लिए, कुछ वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ और नवीनता धारण करने के लिए, और आप वहाँ जाकर के केवल खाओ पियो मौज करो घूमो फिरो, बस जो भी आपको कंपनी से संपत्ति मिली खर्च करने लिए, उस पॉजिटिव यूज उसको आपने यूं ही बर्बाद कर दिया, इसलिए तो आप नहीं गए ना, आपको इसलिए तो नहीं भेजा ना। तो परमात्मा ने भी हमें इसलिए नहीं भेजा खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। दैट्स नॉट द रीजन व्हाई गॉड सेंट अस इनटू दिस वर्ल्ड। ये भी नहीं है लक्ष्य कि हम इस संसार में संसार की चीजों को जमा करें, क्योंकि न हम कुछ लाए हैं न ले जाएंगे इस दुनिया से। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो यही कहा जाता है, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया है, भाग्य। और जब इंसान मरता है तो यही कहा जाता है, ये आत्मा अपना कर्म लेकर के गई, बस और कुछ नहीं। भाग्य लेकर आई, कर्म लेकर गई, वो कर्म भाग्य बनकर के फिर आगे आत्मा के साथ आया संस्कार के रूप में। और यही आत्मा के आने का यहाँ लक्ष्य है। अब ये जब हम बुद्धि में समझ जाते हैं तो आत्मा के स्वरूप को सही रूप में पहचान लेते हैं। और जब आत्मा को समझ लिया तो परमात्मा को समझना मुश्किल नहीं है। इसलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। आत्मा एक ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी एक ज्योति है, इसलिए परम ज्योति है। परम क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान गुण शक्तियों में कर्तव्यों में वो परम है, सुप्रीम। और जब हम कहते हैं आत्मा तो वो भी एक ज्योति है, अ पॉइंट इन फॉर्म बट एन ओशन इन वर्च्यूज, इन्फिनिटेसिमल इन फॉर्म एंड इन्फिनिट क्वालिटीज इन एन इन्फिनिटेसिमल डॉट। इन्फिनिटी और पॉइंट दोनों की कोई मेजरमेंट नहीं है, एंड येट बोथ एग्जिस्ट। तो परमात्मा का यही स्वरूप है, इन्फिनिटेसिमल पॉइंट विथ नो डायमेंशंस हैविंग इन्फिनिट क्वालिटीज। इसलिए शांति का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिमान, जितनी महिमा करो ईश्वर की उतनी कम। पर ये किसकी महिमा है? उसी निराकार ज्योति स्वरूप की, जो निराकार है क्योंकि उसका कोई फिजिकल मेजरमेंट उनके रूप का नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। वो हमारे परम पिता हैं, वो परम धाम के वासी हैं, हम आत्माएं भी उसी घर के वासी हैं। तभी तो कहते हैं भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। अब मन को उस घर में लगाना, अपने पिता में लगाना, ये क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग को बदलकर सतयुग बनाने के लिए, अधर्म का नाश करने, सतधर्म की स्थापना करने। तो इसीलिए क्या विधि है जो हम परमात्मा से मिलन मनाएं? कैसे संबंध जोड़े जो आज टूट चुका है? क्यों नहीं आज हम संबंध बना सके परमात्मा से? क्यों नहीं उनके गुणों को अनुभव कर सके? कैसे टूट गया था संबंध? क्योंकि हमने परमात्मा को और अपने आप को बहुत अंतर में ला दिया। हमने समझ लिया परमात्मा तो निराकार है, न नाम है न रूप है न गुण है, कुछ भी नहीं है, और मेरा तो फलाना नाम रूप धर्म जाति भाषा, कितनी हदों में ला दिया हमने अपने आप को। अब परमात्मा कहाँ, हम कहाँ, मिलन कैसे होगा? अब हमें पता चला कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है, दोनों का साक्षात्कार होता है, लेकिन ये आत्मा का हुआ या परमात्मा का हुआ ये तुरंत पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों ज्योति स्वरूप है। तो दोनों ही स्वरूप में समान है। फिर दूसरा, जो आत्माओं का घर है परमात्मा का भी वही घर है। बच्चे अपने पिता के घर में ही तो रहेंगे, माता पिता के घर में ही वही एड्रेस होती है ना। फिर बाद में भले दूसरा घर बनाते हैं, लेकिन बच्चा पैदा होता है तो उनकी एड्रेस तो माँ बाप के घर की एड्रेस होती है। तो आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान वो एक ही है, परमधाम। ये संसार नहीं है, ये संसार एक मुसाफिर खाना है। हम दो दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। तो जब ये समझ में आता है तो घर याद आता है। कई लोग दुखी होकर के भगवान को कहते हैं, हे भगवान मुझे उठा लो इस दुनिया से, हमको जीना नहीं है, मरना चाहते हैं। हम कहते हैं क्यों मरना चाहते हो, ये संसार तो बहुत सुखमय है, क्यों मरना चाहते हो? कहते बस बहुत दुखी हो गए। लेकिन अगर ये पता चले कि ये संसार सुखमय है तो कभी मरना नहीं चाहेंगे। परंतु हम कहते हैं हे भगवान उठा लो, ये कहने की बजाय हम मेडिटेशन में मन को परमात्मा के पास ले जाते हैं। एक सेकंड में पांच तत्वों से पार आत्मा उस परम धाम में मन बुद्धि से पहुंच सकती है। इट विल टेक यू ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू टेक योर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू दैट सुप्रीम होम परम धाम। इसीलिए निवास स्थान की समानता है, आपका वही घर है। अपने घर जाने के लिए निमंत्रण नहीं चाहिए आपको, मन से सहज जा सकते हो। अब यहाँ बैठे कोई बैंगलोर से आए हैं, कोई बॉम्बे से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, अपने जहाँ यहाँ रहते हैं वहां पर मन से जाने में आपको कितनी देर लगेगी? बस सोचा और पहुंच गए घर में। तो मन से परम धाम जाने में भी देर नहीं लगेगी, मेरा घर वही है जहां मेरे पिता का घर है। और फिर तीसरी समानता है गुणों की समानता। हम समझते थे परमात्मा तो गुणों का सागर है और मैं तो नीच पापी दास कपटी गंदा बंदा चरणों की धूल मिट्टी मूरख निर्बल, न जाने कितने कितने हीन शब्द, इन्फीरियर शब्द अपने लिए यूज किए, और भगवान की तो बहुत स्तुति गाई। तो परमात्मा पिता इतना ऊंचा और हम उनके बच्चे इतने नीच, ये तो सही नहीं है। परमात्मा तो परमधाम का वासी और मैं संसार का प्राणी, वो भी मिट्टी मूरख निर्बल, हम मिलन कैसे करेंगे? नहीं हो सकेगा। मिलन होने लिए कुछ ट्यूनिंग चाहिए, जैसे हम रेडियो ऑन करते हैं कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो रेडियो स्टेशन लाने के लिए उसी मीटर बैंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर अपनी रेडियो की सुई को रखना पड़ेगा, इट हैज टू मैच। हम अपनी बेटी की का विवाह करना चाहते हैं किसी से, हा? तो जो लड़का हमने ढूंढा लेकिन उसकी जन्म पत्री अपनी बेटी की जन्म पत्री से मिलाएंगे और ज्योतिषी से पूछेंगे, जरा ज्योतिषी जी देखिए तो इनका योग है, इनके साथ विवाह ठीक होगा? तो ज्योतिषी क्या करता है, दोनों की जन्म पत्री मिलाता है, उनकी कुंडली मिलाता है और कुंडली में देखता है मेल कितना है, हाउ मच मैचिंग देयर इज, ग्रह समान, संस्कार समान, स्वभाव समान, ये सब मैच होना चाहिए। एंड इफ दे आर नॉट मैचिंग, आपस में ग्रह टकरा रहे हैं, तो कहेंगे योग नहीं है। तो योग होने लिए क्या चाहिए? देयर शुड बी सम सिमिलैरिटी, देयर शुड बी सम मैचिंग। इसलिए राजयोग वो मैचिंग बताता है कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आप भी ज्योति बिंदु स्वरूप हो। परमात्मा परमधाम का निवासी, आप भी वहीं के वासी हो। परमात्मा गुणों का सागर है, आप भी गुणों की स्वरूप हो। लेकिन कई इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं, समझते आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो सदा परमात्मा है। हम आत्माएं तो पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा आदि आदि कई चक्रों से गुजरते हैं, परमात्मा तो सदा ही दाता है। कल आपको ये परिचय पूरा मिला। तो जब हम परमात्मा के गुणों को पहचान कर ये निश्चय करते हैं कि मेरे भी यही गुण हैं, तो हम भिखारी की तरह नहीं मांगेंगे, हम अधिकारी बन के उसको लेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत सुंदर यहाँ विधि बताई है। ये राजयोग एक यात्रा है, ये यात्रा है। इस यात्रा में हमें लक्ष्य मिलता है कि हमें अपने धाम में, जिस संपन्न संपूर्ण स्थिति में मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई थी, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, अब उसी स्थिति में वापस जाना है। और उस स्थिति में वापस जाने के लिए क्या क्या हमें अपने मन में परिवर्तन लाना है। योग का मतलब ये नहीं है कि हम यात्रा करते जाएं और अंत में जाके परमात्मा से मिले, नहीं नहीं, तब तक योग नहीं चाहिए। योग फर्स्ट स्टेप से चाहिए, योग माना मिलन, तो फर्स्ट स्टेप से मिलन चाहिए। और उसी मिलन से वो प्राप्ति हम करें जो परमात्मा के सारे गुण आत्मा प्राप्त कर उनके समान बन जाए। तो ये स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है आत्मा परमात्मा का चिंतन, इससे आत्म शुद्धि होगी, मन रूपी पात्र शुद्ध होगा। जैसे बर्तन को साफ करते हैं ना दूध रखने के लिए, गंदे पात्र में तो नहीं रखेंगे। तो आत्मा और परमात्मा का चिंतन, कोई मंत्र नहीं है जो आपको हम देंगे कि आप इसका केवल जाप कीजिए, क्योंकि मंत्र शब्द का भी अर्थ समझना होता है। ओम नमो शिवाय माना मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं, तो मैं आत्मा हूं, मैं उस शिव की संतान हूं, जो उनके गुण है वो मेरे गुण है, ये चिंतन चाहिए। यही मंत्र है। मंत्र का वास्तव में अगर हम शाब्दिक अर्थ लें ना, लिटरल मीनिंग ऑफ मंत्र, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मंत्रणा। संस्कृत में मंत्रणा का मतलब होता है विचार विमर्श, राय सलाह, सम एडवाइस, यू नो, ये मंत्रणा है। सम आपस में एक दो को सजेशंस दे रहे हैं। अब ये बुद्धि द्वारा मन को सजेशन देना है। क्या सजेशन देना है? मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ, परमात्मा शांति का सागर है, मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। ये बुद्धि द्वारा मन को दिशा देनी है। और जैसे ये मनन चिंतन करेंगे, मन का थोड़ा शुद्धिकरण होगा, तो परमात्मा से आप, आपका जैसे द्वार खुल गया, टेलीफोन लग गया, आप उनसे बातें कर सकेंगे। यू कैन हैव अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद गॉड, जिसको हम रूह रिहान कहते हैं। रूह उस परम रूह से बातें करती है। प्रार्थना में तो केवल हम बात करते हैं, हम कुछ सुनाते हैं ईश्वर को, मेडिटेशन में तो हमको वो सुनाते हैं, इंट्यूशन आती है, इंस्पिरेशन आती है, क्योंकि रास्ता खुल गया, साफ हो गया, नहीं तो ट्रैफिक जाम था, आगे क्या है पता ही नहीं चलता है। इसलिए परमात्मा से रू रिहान, और जैसे जैसे मन रू रिहान करता ईश्वर से संबंध जोड़ करके, आत्मा परमात्मा के गुणों में एकाग्र हो जाती है। इसको हम एकाग्रता की स्थिति कहते हैं, जिसको कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कहते हैं, ध्यान धारणा कहते हैं, और उसी को हम अनुभूति कहते हैं, समाधि जो अष्टांग योग में कहते हैं। तो वो अनुभूति अगर एक सेकंड की भी हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो राजयोग में आत्मा परमात्मा का जो चिंतन है, वो परिचय के आधार पर चिंतन देना है। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करना है, मैं देह से अलग हूं, जैसे शरीर पर वस्त्र पड़े, ये शरीर से अलग है ना, इसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है जो आत्मा से अलग है। ये माइक्रोफोन मैं यूज कर रही हूं, मैं तो माइक्रोफोन नहीं हूं ना, आई एम वेरी मच अवेयर आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस माइक्रोफोन, इसी प्रकार मैं शरीर से अलग हूँ, ये एक ऐसा सुंदर निश्चय है जो सहज हमको अशरीरी बना देगा, देह भान से न्यारा बना देगा। और जैसे उस निश्चय करते हैं तो परमात्मा का नाम रूप गुणों का भी चिंतन करते हैं, उसमें कुछ सिमिलैरिटी लाते हैं, जैसे बताया रूप में सिमिलर, धाम में सिमिलर, गुणों में सिमिलर। और जब ये महसूस होता है तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैं आत्मा भी एक ज्योति हूँ, परमात्मा भी एक ज्योति है, वो परम ज्योति है। तो मैं ये नहीं कहूँगी शिव बाबा मुझे शांति दो, मैं परमात्मा से क्या कहूँगी शिव बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ परमात्मा को पहचान लिया है, शिव बाबा आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। आई एम वेरी मच अवेयर कि मैं शांत स्वरूप हूँ। और जैसे मैंने ये कहा मेरा संबंध जुड़ गया परमात्मा के साथ, मैं अधिकारी हूँ। आप प्रेम के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान प्रेम स्वरूप हूँ। तो आत्मा के अंदर वो आत्मिक प्रेम ईश्वर के लिए जागृत होगा, सर्व आत्माओं के लिए जागृत होगा। और जैसे हम ये रूलिहान करते हैं महसूस होता है परमात्मा के साथ तो हमारे सब संबंध है, माता पिता शिक्षक गुरु खुदा दोस्त हम कहते ईश्वर को, वो साजन भी है, आत्मा सजनी है, वो आत्मा सीता है, वो राम है, आत्मा सजनी वो साजन। तो सजनी कैसे साजन के पास जाती है, ये एक बहुत सुंदर आत्मा परमात्मा का संबंध है। और जहां ये अनुभव हम करते हैं तो परमात्मा को हम बच्चा भी बना सकते हैं। हम कोई को किसी को बच्चा नहीं होता, बड़ा दुखी होता, हम कहते क्यों दुखी होते हो, भगवान को बच्चा बना लो, भगवान आपकी बहुत सेवा करेगा, बहुत सेवा करेगा। वो बेटा सेवा न भी करे हाँ, लेकिन ईश्वर तो आपकी बहुत सेवा करेगा, इसलिए परमात्मा को ही बच्चा बना दो, इतना निश्चय हो आत्मा में। अब ये जब आत्मा में निश्चय हो तब हम परमात्मा से रूरिहान करके, उनसे सच्ची प्रीत जोड़ करके, उनसे सब संबंध जोड़ करके उनसे हम प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चय चाहिए पहले। और जब ये निश्चय होता है हम भय मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कहा गया ना जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, परमात्मा वो छत्र छाया बनकर के आपके रक्षक बनते हैं। तो ऊपर भी उनकी छत्र छाया, साथ में भी है ईश्वर का हाथ और साथ है, पीछे भी है हमारा रक्षक बनकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी हैं हमारा गाइड बनकर के हमें गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा सुंदर अनुभव हम कर सकते हैं और उसके आधार से हम बहुत शक्ति अनुभव कर सकते हैं। तो और जैसे जैसे ये चिंतन करते जाते हैं मन की एकाग्रता परमात्मा में बढ़ती जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ, शांति के सागर में समाती जा रही हूँ। तो परमात्मा के गुण में मन ऐसा एकाग्र हो जाएगा, जिसी एकाग्रता की स्थिति में हम देखते हैं कैसे अंतर की जो अशांति है वो नष्ट हो जाती है। जैसे सूरज की किरणें, आप एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस कीजिए फोकल पॉइंट पर, तो उस फोकल पॉइंट पर केंद्र पर सूरज की सारी किरणें केंद्रित हो जाएंगी और उस फोकल पॉइंट पर जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन बनेगा इतने बड़े सूरज का, वो इतना सूक्ष्म होगा। और अगर वहां कागज रख दिया, कागज जलना शुरू हो जाएगा। कैसे जलना शुरू हुआ, क्योंकि किरणों को केंद्रित किया, कॉन्सेंट्रेटेड किया। तो ये भी एक एकाग्रता की शक्ति है। जब मन परमात्मा के एक एक गुण में केंद्रित हो जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में समा रही हूं। और जैसे केंद्रित करते गए महसूस होता है कि आत्मा कितनी हल्की होती जाती है, हमारे पाप नाश होते जा रहे हैं। और उसी के आधार से वो अनुभूति होगी, वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होगी। शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो शक्ति हम में तो भरपूर होगी, फिर हम दूसरों को भी बांट सकेंगे। हम जहां जाएंगे वहां शांति का ही प्रवाह फैला सकेंगे, वातावरण में भी शांति का प्रवाह फैलाएंगे। और यही अनुभूति हम ऐसे करेंगे जैसे कि एक बैटरी जो डिस्चार्ज हुई पड़ी थी वो चार्ज हो जाएगी। जब आत्मा रूपी बैटरी उस पावर हाउस से डिस्चार्ज जो पूरी चार्ज करते, राजयोग ये चार्जर का काम करता है, सदा अपने साथ रखो तो कभी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। और आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान मिला, आत्मचिंतन किया, आत्मनिरीक्षण करते हैं। क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप तो कभी अशांत नहीं हो सकती हूँ। मैं आत्मा फिर अपना विश्लेषण करूंगी, कभी क्रोध आ जाता है तो जरूर ये क्रोध मेरा गुण नहीं है, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आत्मा संयम करती है जिससे आत्मबोध होता है और उसी के आधार से आत्म परिवर्तन होता है। तो आत्म परिवर्तन का मतलब है स्मृति परिवर्तन, सोच परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, कृति परिवर्तन। हमारे कर्म बदलते हैं, हमारी स्थिति बदलती है, जिससे हम वातावरण को बदलकर विश्व को बदल सकते हैं। जिसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम इसका भी अभ्यास करेंगे। मन के अंदर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग अगर है उसको एक सेकंड में ब्रेक लगाइए, फुल स्टॉप। ब्रेक लगाना आता होना चाहिए। अगर ब्रेक लगाना नहीं आता है तो बहुत एक्सीडेंट्स कर देते हैं। इसीलिए मन के अंदर इतनी ब्रेक हो नहीं माना नहीं, हम कहते तीन जीरो लगाइए। जैसे हम पहले लोकल कॉल करते थे, फिर एसटीडी चालू हुआ तो एसटीडी में जीरो लगाते थे तो लोकल लाइन सब कट जाती थी, और फिर वहां का कोड नंबर के आधार से उनसे जुड़ जाते थे। तो एसटीडी माना जीरो, लोकल लाइन्स कट। फिर आईएसडी करते थे डबल जीरो, डबल जीरो माना नेशनल लाइन्स भी कट, इंटरनेशनल से जुड़ जाता था। अभी इंटरनेशनल से भी पार, परम धाम से कनेक्शन जोड़ना है तो तीन जीरो लगाइए। अब तीन जीरो माना पहले पहला जीरो है मैं आत्मा हूं, आत्मा जीरो लगाया, बिंदु लगाया, तो जो लोकल लाइन्स है व्यक्ति वस्तु वैभव स्थान परिस्थितियां ये सब फुल स्टॉप, एक सेकंड में फुल स्टॉप। और दूसरा जीरो परमात्मा भी बिंदु रूप, परमात्मा में मन लग गया, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और फिर भी कुछ बातें पुरानी याद आती है तो हम कहते हैं ड्रामा, ये भी एक फुल स्टॉप लगा। तो ये संसार एक खेल है, इसको खेल समझकर साक्षी दृष्टा होकर देखो। ये तीन बिंदु लगा लिया तो मन परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा और सहज हम अपने मन को परमात्मा में लगा सकेंगे। तो चलिए ये लाल सिग्नल हमें मिला कि पहला लक्ष्य है फुल स्टॉप। स्टॉप योर वेस्ट थॉट्स, stop your negative thoughts. फिर दूसरा संकल्प, मैं कौन और मेरा कौन, मैं कहां से हूं, अपने आप से पूछें, अपने आप को ही उत्तर दें, मैं एक आत्मा हूं। एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, प्रकृति के मध्य विराजमान एक चेतन सत्ता हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय कर रही हूं। तो एक अंतर की यात्रा आत्मा करे, एकदम हल्की हो जाए, फिर एक ऊपर की यात्रा करें, इस दुनिया से भी दूर, आवाज से दूर, पांच तत्वों से परे, जहां सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मुझ आत्मा का धाम है। मन और बुद्धि पंख बनकर आत्मा को उड़ाए, आत्म पंछी उस धाम में पहुंच जाए। महसूस करे एक अखंड ज्योति का महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर व्याप्त है, और वन का नेत्र परमात्मा को देखे, परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, मैं आत्मा शिव पिता की संतान हूं। वो शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। हो जाए उस शांति के सागर में, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं। जैसे बूंद सागर में समा जाती है, अनुभव करें शांति की शक्ति को। चले जाइए इसकी गहराई में। शिव पिता का सानिध्य अनुभव कीजिए। शिव परमात्मा से मुझे शांति की शक्ति प्राप्त हो रही है। मीठे बाबा, आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। शिव पिता का सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई, धन्य हो गई। अब इसी शांति की शक्ति से भरपूर होकर वापिस लौटे। फिर से कर्म क्षेत्र पर शरीर रूपी वस्त्र में और कर्म इंद्रियों से कर्म करें। आपका हर कर्म कुशल होगा, हर बोल श्रेष्ठ होगा, हर संकल्प शुद्ध होगा। इसी को कहते हैं योगः कर्मेषु कौशलम्। कर्मों को कुशल बनाने का ही नाम योग है। और यह जीवन सार्थक हो जाएगा, और जन्म जन्म सफल हो जाएंगे।